ओम शांति। बंबई ग्रुप महाराष्ट्र। बंबई वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले राजधानी तैयार करेंगे और आप प्रजा और राजा रानी तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों को विशेष ब्रह्मा का वरदान है, कौन सा? नरदेसावर। रमेश भाई से, कौन सा वरदान है? नरदेसावर। नरदेसावर का अर्थ है सदा संपूर्ण, सदा भरपूर। नरदेसावर शब्द कई मुद्दियों में आया हुआ है, 94, 84, 87, जब जब बॉम्बे से मिले बाबा ने ये शब्द का प्रयोग किया। तो नरदेसावर का अर्थ है सदा संपूर्ण और सदा भरपूर, कभी कोई कमी नहीं होगी। नरदेसावर अर्थात सदा कमाने वाले, कमाने में होशियार, ऐसे नरदेसावर सदा भरपूर हो या कभी खाली हो जाते हो, इतना भरपूर जो औरों को भी भरपूर करने वाले। बॉम्बे वाले राजधानी के राजा रानी और प्रजा तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों का तो बहुत बड़ा काम हो गया, दिल्ली वालों को तो को भी राज्य अधिकारी तो बनाना पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी देखो लास्ट जन्म में भी राज्य अधिकारी तो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली और बॉम्बे दोनों को मिलकर राजधानी जल्दी जल्दी तैयार करनी है। पसंद है? डेट भी फिक्स करेंगे ना, डेट नहीं भूल जाना। दिल्ली और बॉम्बे वाले जब कहेंगे राजधानी तैयार हो गई, तब तो काम होगा ना। राज्य अधिकारी हो नहीं और राज्य तैयार हो जाए, कैसे होगा? बॉम्बे में सेवा के रत्न भी अच्छे 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 हैं या अच्छे थे अच्छे हैं? बाप कहते हैं अच्छे थे अच्छे हैं। देखो एक एक रत्न, पुराने पुराने रत्न गिनती करो तो कितने अच्छे हैं। दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, क्योंकि आदि से सेवा के निमित्त बने हो। ऐसे तो गुजरात भी कम नहीं है। गुजरात लास्ट सो फास्ट है और ये आदि है। गुजरात ने वृद्धि बहुत जल्दी की है। तो पापा बॉम्बे ग्रुप से मिल रहे हैं। मुंबई वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले तो राजधानी तैयार करेंगे और आप क्या तैयार करो?
राजा रानी, प्रजा।
प्रजा और राजा रानी। बॉम्बे वालों को विशेष ब्रह्मा बाप का वरदान है नरदेसावर। नरदेसावर का अर्थ है सदा संपूर्ण, भरपूर, कभी कोई कमी नहीं। नरदेसावर अर्थात सदा कमाने वाले, कमाने में होशियार, ऐसे नरदेसावर सदा भरपूर हो या कभी खाली हो जाते हो, इतना भरपूर, कितना भरपूर जो औरों को भी भरपूर करने वाले। औरों को भरपूर कौन कर सकेगा? जो स्वयं भरपूर है वही दूसरों को भरपूर कर सकता है, जो स्वयं संपन्न है वही दूसरों को संपन्न बना सकता है, जो स्वयं आगे जो खाली है वो नहीं बना सकता,
फुल स्टॉक है वो
सब। जो फुल स्टॉक है वही दूसरों को फुल स्टॉक बना सकता है, जो जो स्वयं खुश है वही दूसरों को खुशी दे सकता है, खुशखबरी सुना सकता है। जो स्वयं ही खुश नहीं है वो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? खुशी का झरना सदा बेहतर है, आगे वाली संडे की मुरली है। ये झरना बंद नहीं होना चाहिए बहना। निखिलेश भाई कितना टाइम बहता है खुशी का झरना? बंद तो नहीं होता है ना, सुबह चालू होता है ना, रात तक बैठता है कि सुबह बंद हो जाता है 9 से 5 तक, टाइमिंग नहीं है उसका। खुशी का झरना केवल अमृत वेला मुरली तक, उसके बाद में बंद तो सीधा शाम को थोड़ा थोड़ा चालू होता है फिर। तो जो सदा खुश रहते हैं वही दूसरों को खुश कर सकते हैं। जो सदा खुश है वो बाप दादा की आंखों के सामने घूमते रहते हैं, बोला था बाबा ने, झूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो जो स्वयं खुश है वही दूसरों को खुश कर सकता है, जो स्वयं निर्विघ्न है वही दूसरों को निर्विघ्न बना सकता है, जो स्वयं निष्काम है वही निष्काम बना सकता है, जो स्वयं विश्व कल्याणकारी है वही दूसरों को विश्व कल्याणकारी बना सकता है। आज कहा है बाबा ने वरदान में, देवेंद्र भाई क्या कहा वरदान में, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणी हूँ। ये श्रेष्ठ भावना, ये श्रेष्ठ कामना सदा इमर्ज रूप में रहे। तो ये भावना सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना सदा इमर्ज रहे तो हद की सारी समस्याएं समाप्त परिवर्तित हो जाएंगी। विजयीपन के संस्कार इमर्ज रहे तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो जो स्वयं विश्व कल्याणकारी है वही दूसरों को विश्व कल्याणकारी बना सकता है, और जो स्वयं तृप्त है, भरपूर है, संतुष्ट है, कोई कामना नहीं है, ऐसा जो है वही दूसरों को वैसा बना सकता है। जो स्वयं योगी है, कल कहा था योगी बनो और योग्य, जो स्वयं योग्य है वही योग्य बना सकता है, जो योगी है वही योगी बना सकता है, जो स्वयं ज्ञानी है वही ज्ञानी बना सकता है, जो स्वयं जिसमें समझ है वही दूसरों को समझदार बना सकता है। और जो स्वयं जागृत अवस्था में है, सोया एक सोया हुआ है व्यक्ति दूसरे सोए हुए व्यक्ति को कैसे जगाएगा? आत्मा की ज्योति जो बुझी हुई है उसको अगर जगाना है तो स्वयं जागृत अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, स्वयं जागती ज्योत, चौकस, वॉचफुल, अलर्ट, सतर्क कर स्वयं रहना पड़ेगा, तो ही दूसरों को जगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये ऐसे कोई जागेगा? यहाँ जागरण का अर्थ है आत्मा की, जागरण की बात है। आत्मा संपूर्ण जैसे कि ज्ञानमय हो जाए, ज्ञान का प्रकाश उसमें समा जाए, उसके लिए स्वयं जागती ज्योत बनना पड़ेगा। और जो स्वयं स्मृति स्वरूप है वही दूसरों को स्मृति स्वरूप बना, जो स्वयं समर्थ है वही दूसरों को समर्थ बना सकता है, जो स्वयं निर्विघ्न है वही दूसरों को निर्विघ्न बना सकता है, जो स्वयं प्यूरिटी से संपन्न है, पवित्र है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा है, ब्रह्मचर्य की जिसने साधा है, ब्रह्मचर्य में जो स्थित है वही दूसरों को ब्रह्मचर्य में स्थित कर सकता है, ब्रह्मचर्य की धारणा करा सकता है, पवित्रता के बल से भर सकता है, जो स्वयं अनुभवी मूर्त है। जिसके पास अनुभव ही नहीं है वो दूसरों को क्या अनुभव कराएगा? जो स्वयं अनुभव से भरपूर है वही दूसरों को अनुभव भी मूर्त बना सकता है, जो स्वयं खजानों से संपन्न है वही दूसरों को मालामाल, नरदेशावर, जो स्वयं गुणमूर्त है, आज बोला है गुणमूर्त बनो, गुणों का वर्णन करो, कमजोरियों का नहीं, स्लोगन। तो जो स्वयं गुणमूर्त है वही गुणमूर्त, गुण स्वरूप, गुणवान, गुणचोर, गुण संपन्न, गुण ग्राहक जो है वही दूसरों को गुण ग्राहक, गुण संपन्न, गुण मूर्त बना सकता है। और जो अच्छी रीति पढ़ता है वही पढ़ा सकता है, जो पढ़ते ही नहीं है वो कैसे पढ़ा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे समझ में तो आ गया पर मैं समझा नहीं सकता, तो बाप कहते हैं समझा नहीं है। तो जो स्वयं पढ़ा हुआ है, जो स्वयं समझा हुआ है, जो स्वयं सयाना हुआ है, वही दूसरों को समझा सकता है, पढ़ा सकता है। और वो हो गया। और जो फिर निश्चिंत है, निश्चिंत और बेफिक्र, एक उर्दू शब्द है एक हिंदी शब्द है। तो जो स्वयं निश्चिंत है और जो स्वयं बेफिक्र है, वही दूसरों को फिक्र से फारिग, निश्चिंत बना सकता है। जो स्वयं धारणा मूर्त है, वही धारणा मूर्त बना सकता है। सेवा के संबंध में जो स्वयं उमंग उत्साह में रहता है, वही दूसरों में उमंग उत्साह भर सकता है, नहीं तो उमंग उत्साह कैसे कोई भरेगा, किसमें पंप कर सकता है उमंग उत्साह। जो स्वयं सेवा के क्षेत्र में संतुष्ट हो गया। और जो सरल चित्त निर्विघ्न हो गया, मिलनसार, निमित्त निर्माण, विशाल बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि, जो स्वयं प्लानिंग बुद्धि है, वही दूसरों को प्लानिंग बुद्धि बना सकता है। नहीं, अभिमान की बात नहीं है, दूसरों को क्या बना सकता है, जो स्वयं क्या है और तभी दूसरों को क्या बना सकता है, तो वो भी है प्लानिंग बुद्धि। एक रहेगा तो बाकियों की भी बुद्धि चलेगी ना। आइडिया, न्यू आइडिया। अगले संडे कहा है बाबा ने इंजीनियर ग्रुप को, जो स्वयं वैराग्य में स्थित है, वही दूसरों को वैराग्य के पाठ पढ़ा सकते हैं। दूसरों को सिखाए और खुद ना करे तो कौन मानेगा, नहीं हो सकता है। जो जिसको सिखाना है उसका असर तभी होगा जब वो स्वयं उसमें स्थित है, नहीं तो कितना भी सिखाते रहे नहीं होने वाला। हाँ, महात्मा गांधी की एक स्टोरी है ना, महात्मा गांधी की जीवन कथा में एक और एक वृत्तांत दिया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि जब वो अफ्रीका में थे तब उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी थे और उनको उनको सिखाना पड़ता था। तो उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा था, इतना उधम मचाता था, हमेशा हमेशा एक दूसरे से झगड़ता था, लड़ता था। अभी एक बार तो उसने बहुत हद कर दी, तो उन्होंने उसको बुलाया और बुला के उसको समझाया, फिर भी वो समझा नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने उस लड़के ने उसको धोखा देने की कोशिश की, तो उसको पहली बार बहुत क्रोध आया। फिर वहां जो रूरल था, वो रूलर, छड़ी, बेत, डंडा, उनको इतना क्रोध आया कि ऐसा पहले कभी किया नहीं था, पर वो लिया और उसको मार दिया। तो वो जो लड़का था उसने देखा कि इनको कितना क्रोध आया, तो उसने माफी मांगी और फिर चला गया। बाद में तो उसने ऐसा किया नहीं, पर उन्होंने लिखा है कि आज तक इस कृत्य के लिए मुझे अपने जीवन में पश्चाताप है कि मैंने किसी को, वो भी हिंसा थी, मैंने किसी को मारा, क्योंकि उसमें दो भाव मिश्र थे, जैसे कि मिश्रित भाव था। एक तो दंड देने की भावना थी और दूसरा क्रोध समाया हुआ था। और उन्होंने देखा कि उसके बाद भी वो जो विद्यार्थी है आगे कभी इतना सुधार उसमें आ नहीं पाया, दंड नीति को अपनाया। तो उन्होंने उसमें लिखा कि जो शिक्षक होता है उसको उसका स्वरूप बनना होगा, कम से कम जिनको वो सिखा रहा है उनके लिए, खुद के लिए नहीं, परंतु जिनको वो सिखा रहा है, जिनको वो समझा रहा है, एटलीस्ट फॉर देम, कम से कम उनके लिए उसको अपनी ही शिक्षाओं का स्वरूप बनना पड़ेगा, तो ही वो शिक्षा फलीभूत होगी। जैसे बुद्धि की कसरत है, वैसे जैसे मन की कसरत है, जैसे शरीर की कसरत है, वैसे ही यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आत्मा की कसरत आत्मा को करानी पड़ेगी, तभी वो शिक्षित होगा, अन्यथा नहीं। तो जो स्वयं में है तो ही हम दूसरों को वो बात बता सकते हैं। अगर वो नहीं है और फिर भी हम बता रहे तो उसका असर नहीं होगा। और क्या, जो स्वयं हम है और क्या दूसरों को कर सकते हैं, जो स्वयं आगे बढ़ने की जिनमें इच्छा है, कामना है, प्रेरणा है, वही दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो स्वयं अनासक्त है, जो स्वयं वैरागी है, जो स्वयं संन्यस्त है, जो स्वयं वैराग वृत्ति में रहने वाले, वही दूसरों में वैराग भर सकते हैं। जो स्वयं भोग विलासी है, डूबे हुए है वासनाओं में, वो कैसे किसी को वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं? तो जो स्वयं वीतराग अवस्था में है, वैराग की अवस्था में है, जिन्होंने स्वयं बुद्धि से संन्यास किया है, वही दूसरों को करा सकते हैं। और जो न्यारे है वही न्यारे बना सकते हैं। जो नष्टो मोहा है, हद की प्रवृत्ति, स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, इन सब से जो न्यारा है, जो नष्टो मोहा है, वरदान थाना, इन सब से न्यारा और नष्टो मोहा। और जो स्वयं श्रेष्ठ लक्ष्य रखता है, महान लक्ष्य रखता है, वही दूसरों को प्रेरित कर सकता है कि तुम्हें भी महान लक्ष्य रखना है। नहीं तो अगर लक्ष्य नहीं है जीवन में, अगर ब्राह्मण जीवन में यहाँ रहने के बाद अगर लक्ष्य को श्रेष्ठ ही नहीं रखा, तो सारा समय यहाँ वहां की बातों बातें करने में, स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे और धन के पीछे और साधन के पीछे और संबंध को निभाने के पीछे अगर संग समय और संकल्प इनमें लगा रहे, तो वो समर्पण नहीं है। समर्पण समारोह कौन सा मनाना है? संकल्प और समय दोनों ही सेवा में अर्पण, वो है समर्पण समारोह। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधन के पीछे, संबंध निभाने के पीछे, एक बाप से संबंध निभाने हैं सारे, उसमें गफलत, उसमें लापरवाह, और बाकियों से संबंध निभा रहे कि ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। वो तो सबसे बड़ी बात है।
शुरू में तो हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा।
क्या परिवार
ज्ञान में चलने के बाद इतना बड़ा हो
जाएगा? तो जो स्वयं नष्ट मोह है वही नष्ट मोह बना सकते हैं। जो स्वयं बिजी रहते हैं वही दूसरे को बिजी कर सकते हैं। खुद ही बिजी नहीं है, खुद ही ज्ञान में और योग में और सेवा में और धारणा में और स्वपुरुषार्थ में और चिंतन में और मनन में और अध्ययन में और पठन में और पाठन में, ये सब में से बिजी। और क्या हो तो क्या हो सकता है? क्या हो तो क्या बना सकते हैं? में क्या खुद है तो दूसरों को क्या कर सकते हैं? जो स्वयं शांत चित्त है वही शांत चित्त बना सकते हैं। जो स्वयं शांति का स्वरूप है, नहीं तो स्वयं अशांति है, अशांत है और लेक्चर देने जा रहे हैं किस पे, विश्व में शांति कैसे हो? स्वयं स्वधर्म में स्थित नहीं है और टॉपिक पर लेक्चर दे रहे हैं मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। नहीं है और दूसरों को लगन में मगन कैसे बनाया जा सकता है? कोई कल कहा ना, सेवा की लगन और सेवा की लगन में मगन।
जो अमृत वेला उठते हैं
वही अमृत वेला उठते नहीं, और भाषण का टॉपिक है अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनाए। 7 बजे उठो, 9 बजे जाकर भाषण करो अमृत वेला पर कि अमृत वेला कैसे शक्तिशाली, और सब सुन के कहे क्या भाषण था, वाह
हुआ था या मैट्रिक,
बहुत बढ़िया भाषण था। परंतु भाषण तो बहुत बढ़िया था, जब तक सभा में है, सभा से बाहर जाते ही खलास, असर नहीं किसी पर, अंदर नहीं जाएगा। प्रशंसा मिल सकती है, तालियां बज सकती है, वाह वाह हो सकती है, परंतु तीर नहीं लगेगा। ज्ञान कल कहा था, योग का जोहर चाहिए, ताकत चाहिए, और दिल वाले
दुआ।
तो जो स्वयं स्थित है वही स्थित कर सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट चल रहा था हमारा? शांति का पॉइंट। जो स्वयं शांत है, नरदेव सर ने वो तो बहुत पहले बीच का चल, जो स्वयं शांत स्वरूप है वही शांत स्वरूप बना सकते हैं। शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, जो स्वयं आनंद स्वरूप में स्थित है वही आनंद स्वरूप में स्थित करा सकते हैं। जो स्वयं प्रेम स्वरूप है, वह दूसरों को घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं कर सकते। जो स्वयं प्रेम से भरपूर है प्रेममयी है, प्रेम पूर्ण है प्रेम मूर्त है, प्रेम में समाये हुए है प्रेम में खोए हुए है, वही परमात्म प्रेम का अनुभव आत्माओं को करा सकते है, नहीं तो नहीं। प्रेम जो स्वयं शक्तिशाली है, जो स्वयं समर्थ है, जो स्वयं बलशाली है, वही दूसरों को बलवान बलशाली शक्तिशाली समर्थ बना सकते हैं, ताकतवर बलिष्ठ। चोप चीनी, जो स्वयं चोप चीनी खाते हैं वही चोप चीनी खिला सकते हैं, और जो स्वयं मीठे है वही दूसरों को मीठे बना सकते हैं। परसों कहा था ना बाबा ने, सुंदर मीठे स्वभाव जिनका है वही बड़ी मिठास से समझाते हैं, महसूस तक कराएंगे, और जो स्वयं खुशी का हो गया वो सबसे पहला ही था। जो स्वयं अतीन्द्रिय सुख में रहते इंद्रियों के सुखों से परे, जिनका आनंद इंद्रिय सुख नहीं है, ये नीचे का है सब मटेरियल हैप्पीनेस। जो अति इंद्रिय सुख में रहते सुपर सेंशुअल सेंसेस से ऊपर उठे, जिनका चिंतन अब देह का नहीं है, जिनका देखना अब देह को नहीं है, जिनके संकल्प अभी जिनमें जिनको संकल्पों में आनंद है, अब जिनका आनंद अब संकल्पों में देह में नहीं, देह को देखना देह को जानना देह को पढ़ना देह में आनंद लेना नश्वर है, जो उससे वो ऊपर उठ गया है, ज्ञान में आनंद है अभी। योग का तो छोड़ो वो तो बात की बात है, ज्ञान में आनंद, संकल्पों में जिनका आनंद है, एक है देह का आनंद बस, भोजन देह का आनंद है वो नहीं, उससे ऊपर जो उठे वैचारिक आनंद में है जो, तो जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं वही दूसरों को अतीन्द्रिय सुख में स्थित करा सकते हैं, और योगी है वो योगी बना सकते हैं, योग युक्त है योग युक्त कर। जो लगाव से स्वयं मुक्त है, अगर खुद ही कई लोगों में लगाव है, कल का ना संबंधों को निभाने के पीछे, चौथा पॉइंट कौन सा था, संबंधों को निभाने के पीछे, ये जो छोटी छोटी बातें इसमें अगर समय संकल्प जा रहा है उनका, उसमें लगाव है, लगाव झुकाव आसक्ति इन्फैचुएशन, उसी में सारा फैमिलियरिटी, उसी में ज्यादा समय जा रहा है, बातचीत ये सब में अगर समय जा रहा है तो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकते। और उपराम तो बहुत बड़ी बात है, चलो जो स्वयं उपराम है दूसरों को उपराम बना सकते, जो स्वयं साक्षी है दूसरों को साक्षी बना जो स्वयं मरे हुए है वो दूसरों को मार देंगे जो तीव्र पुरुषार्थी है वही दूसरों को तीव्र पुरुषार्थी बना सकते, जो स्वयं ढीले पुरुषार्थी है वो दूसरों को क्या ढीले तीव्र पुरुषार्थी वही कुसंग से दूसरों को छुड़ा सकता है। संग वो मंडे का वरदान था ना, स्नेह का सागर, अब तक भी आपका जो साधारण पुरुषार्थ है आपका जो ढीला पुरुषार्थ है उसको देखते हुए भी एक्स्ट्रा मार्क्स और एक्स्ट्रा मदद, मदद नहीं शायद दूसरा शब्द है, एक्स्ट्रा मार्क और वो दे रहा है अब तक भी, पर वो भी कब तक, अभी तक तो स्नेह का सागर बन वो कर रहा है ये सब, एक्स्ट्रा मदद दे रहा है, एक्स्ट्रा मार्क्स और एक्स्ट्रा और कुछ है मदद, वो तो मदद और हिम्मत के लाभ का वरदान, वरदान का लाभ लो, वो दूसरा वाक्य है उसके पहले का वाक्य है। चलो तो वो एक बात,
जो
स्वचिंतन में है वही दूसरों को स्वचिंतन में स्थित कर सकते हैं, जो स्वचिंतन में ही नहीं है परचिंतन में है, जो स्वयं मौन की अवस्था है साइलेंस में जिसको आनंद है, एकांत का अनुभव जिसने स्वयं किया हुआ है वही दूसरों को बता सकता है कि एकांत में जाने से ये प्राप्तियां होती है। अभी जिसने एकांत में कभी गया ही नहीं, भीड़ में ही खोया हुआ है, समाज में ही खोया हुआ है, उस एकांत का अनुभव, एकांत में ही तो प्रगति होती है, एकांत में ही तो चिंतन होता है, एकांत और मौन साइलेंस और सॉलिट्यूड अध्यात्म में उन्नति जब तक ये दो चीजें नहीं है नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि बीच बीच में एकांत में चले जाओ, बीच बीच में 10 दिन एक हफ्ता एकांत में चले जाओ। जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि वहां जाओ, स्वचिंतन करो, भक्ति करो, प्रभु चिंतन करो, थोड़ा भजन करो, भजन साधन करो, और फिर संसार में फिर आओ, बीच बीच में बाहर निकलते जाओ इस प्रवृत्ति से। नहीं तो ये संसार की माया तो ऐसी है कि डुबो देती है। इसमें से बीच बीच में निकलना, बीच बीच में मौन, बीच बीच में एकांत, वो जब तक नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वचिंतन भीड़ के साथ में ज्ञान की चर्चा हो सकती है, पर स्वचिंतन एक दूसरा विषय है। जितने महान लेखक हुए हैं, जितने महान गीतकार हुए, जितने महान संगीतकार हुए, जितने महान शिल्पकार हुए हैं, जितने महान कवि हुए हैं, वो सब सॉलिट्यूड में गए हैं, एकांत में गए हैं, प्रकृति के सानिध्य में गए हैं। कमरे में बैठकर चिंतन नहीं होता है। प्रकृति, खुले आकाश में, नदी, समुन्दर, झरने, पहाड़ी, झील, प्रकृति जो है उसके सानिध्य में ही मन खुलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें ही माउंट में तो बहुत है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। ये जब तक इनके सानिध्य में आत्मा नहीं जाती है, वो अपने सेवा का चिंतन और वो जो जो भी है उसमें हद की प्रवृत्ति और उसके बारे में चिंतन में रहती है। मन खुलेगा नहीं, प्रकृति में जाना होगा, खुले आकाश में, बेहद में, चांदनी रात में।
वो भी अकेले क्यों, यहाँ आसान बहुत आ जाएंगे ना।
तो एकांत का बहुत महत्व है, उधर भी और इधर भी। स्थूल एकांत की बात चल रही है, वो तो बाबा ने जो एकांत की परिभाषा दी है वो तो बहुत उच्च है, सर्वोच्च परिभाषा है। एक के अंत में खो जाना वो लक्ष्य है, जैसे उसकी ये सारी विधियां है। एकांत का अनुभव करना, वो एकांत अगर वहां पक्का हो गया तो फिर भीड़ में भी किया जा सकता है वही अनुभव, डायरेक्ट भीड़ में नहीं किया जा सकता है, वो अनुभव चाहिए। और क्या है तो क्या बना सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी जो है वही दूसरों को स्वराज्य अधिकारी बनने की शिक्षा दे सकते हैं। इंद्रियों पर संयम जो है जिनका है, स्वयं ही इंद्रियों पर संयम नहीं है, इंद्रिय चलायमान है। जो स्वयं सिविलाए है आई से, वही दूसरों को सिविलाइज बना। कल कहा था ना, सिविलाइज में मेहनत है। सोच के बताऊंगी। स्वयं लवलीन, खोए हुए, मगन, जो स्वयं आत्माभिमानी है वही दूसरों को आत्माभिमानी बना सकते। पवित्र दृष्टि तो है, पर सिविल जो शब्द है वो तो अलग प्रकार का शब्द है। जो स्वयं श्रीमत पर चलते वही कह सकते हैं कि श्रीमत पर चलो, श्रेष्ठ मत, श्रीमत, और हो गया
धारणा, जिनका
धारणा हो गया, ज्ञान योग, धारणा, सेवा, ये चार जो जो ये चारों में है वो चार कर सकते हैं, और वो दूसरों को कह सकते हैं। जो स्व उन्नति में रहते हैं, कल का श्लोक वरदान में था ना, जो स्व सेवा करते हैं वही विश्व सेवा कर सकते हैं। वैसे तो कल कहा था कि विश्व सेवा में स्व सेवा समाई हुई है, पर दूसरा वाक्य ये ही है कि जिसने स्व सेवा नहीं की है वो विश्व सेवा भी नहीं कर सकते। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। विश्व सेवा में स्व सेवा समाई हुई है, समाई हुई है, और जब तक स्व सेवा नहीं तब तक विश्व सेवा नहीं हो सकती। बोथ आर राइट। और जो बहन बाप समान है, बाप समान, वो तो सारे आ गए उसमें, बाप समान, कर्मातीत, लक्ष्मी नारायण, थोड़ा ग्राउंड लेवल उसमें दूसरों को उड़ती। ये शब्दों का खेल है फिर अभी सारा, शब्द का सौंदर्य। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि इतना भरपूर जो औरों को भी भरपूर करने वाले, तो स्वयं को भरना है, दूसरों को भरने की सेवा बाद में वो स्वतः होगी, उसके लिए संकल्प करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं भरपूर हो गए तो भरपूर, भरपूर अर्थात केवल फुल नहीं, वो जो छलकने वाले की बात चल रही है, फुल नहीं, ओवरफ्लोइंग, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मुरली में ओवरफ्लोइंग, भरपूर शब्द का। ओवरफ्लो मतलब वो भरा है और अभी छलक रहा है, गिर रहा है। वो कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो सोच नहीं रहा है कि मुझे गिरना है, पर कोई पर्याय ही नहीं है अभी, स्वतः ही हो रहा है। तो हमारे मुरलीधर किधर है? अच्छा आप ही आ जाओ डबल मुरलीधर जितना हो सके कोई किताब कागज कुछ नहीं लाना है, सब इधर।
ओम शांति। 24 तारीख की जो मुरली रिपीट होने जा रहा है तो बाबा ने हेडलाइन में जो बातें बाबा ने बोला था तो उसके पीछे बाबा ने बीच बीच में बहुत बार रिपीट किए हैं, तो हेडलाइन में बाबा ने क्या बोले थे? तो
भक्ति का फल मुरली में कुछ और था।
तो बाद में बाबा ने पीछे एक बार इस बात को फोकस किया है, भगत को जो भक्ति का फल देना अर्थात लेके जाने के लिए बाबा ने बोला, उनको ही पहला ले जाते हैं बाबा। तो बाबा ने दूसरी भी बातें बोला, ये वैरायटी बातें बाबा ने बीच में डाला है तो किस बात से संबंधित है वैरायटी शब्द? अनेक धर्म जो होते हैं वैरायटी धर्म का झाड़ कहा जाता है उसको, और बीच में राम और सीता की बातें भी बाबा ने बीच में डाले थे
बाप राम।
भगवान अच्छा। तो बाबा ने ऐना के बारे में बोला था झाड़ अंधों के आगे ऐना। तो बाबा ने आगे भी बोला था कि कौन बच्चे बाबा से बरसा लेते बताइए जिसके नंबर में आप बुद्धि में आती
है।
वो तो कल की मुरली ये तो और बारे और टाइम में तो आपने बोला ही हुआ है कल की मुरली में है किसी के मन मस्तिष्क में आया है? उम्मीद रखते हैं अभी भी कि कोई बताए। मनोज भाई बताइए रूहानी बच्चे ही रूहानी बाप से कड़क सर बाबा ने एक बीच में शब्द बोला है कि पुण्य आत्मा कौन है, पूज्य आत्मा, पूज्य आत्मा अभी और सत्य के बारे में बाबा ने
देवता ही पूज्य आत्मा है।
संगम में कौन पूजे? हाँ उत्तर आ गया है तो इसके बाद
संगम पे शिव बाबा पूजे।
तो इसके बाद आगे ने बाबा ने बोला है कि आत्माओं के लिए कि एक तो जो धर्म वालों के लिए बाबा ने बोला है तो धर्म वाले कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं उसमें जेएनयू के लिए बाबा ने कटक्ष वहाँ कटक्ष किया है, उसमें हमारे हर दिन करते हैं उसके बारे में बाबा ने बोला है। क्या बोला वाला बाबा ने? हाँ, परसों भी बाबा ने बोला था एक्टर के बारे में, जो एक्टर आते हैं तो साधारण ड्रेस पहन के आते हैं, जाते हैं तो खेल पूरा करके साधारण ड्रेस पहन के जाते हैं। तो कल भी बाबा ने बोला कि ये भगवान वाचा है, इस बात को वो नहीं समझ सकते हैं। हम अशरीर आए थे, अशरीर जाना है, तो इस बात को न समझने के कारण से वो कपड़े उतार देते। हाँ ग्रेट। तो बाबा ने एक जम्मू कश्मीर आतंकियों के बीच में ठीक करके बोली, गोलियां चलती है ना तो उसमें क्या बोला बाबा ने? तो इसमें बाबा ने अपने तरफ दुश्मन को मारते हैं, लेकिन हम खुद को ही मारते हैं। और जो आर्मी के लिए भी बोला बाबा ने, हाँ हाँ चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ हम अपने को बनाते हैं, अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, माने धारणा करते हैं, योग करते हैं, तो फिर ये खुद के लिए होता है, नहीं करते हैं तो फिर ये हाँ तकदीर को शुक्र। हाँ तो स्लोगन तो बीच बीच में बाबा ने कहीं के हमारे होल्डर में भी लगे होते हैं।
हाँ वहाँ लगे हुए
हैं। हाँ इच्छा है, समस्या कम हो जाए। तो इसके बाद बाबा ने बीच में भी बोला है, तो बदलाव के बारे में तो भाई साहब ने रिपीट कर ही दिए। हाँ इसमें ब्राह्मण के लिए बोला कि अगर ब्राह्मण के लिए बाबा ने क्या बोला, ब्रह्मा मुख पंक्षावली अगर है तो वो क्या क्या करेगा? हाँ शादी नहीं कर सकता अगर मानता है मैं ब्रह्मा मुख पंक्षावली।
हम ब्रह्मा के अगर ऐसा है
तो
बहन भाई होगी शादी नहीं करते, सिद्ध होता है कि वो नहीं है
ब्रह्मा मुख पंक्षावली। एक लास्ट में बाबा ने बोला है कि क्रिएटर
डायरेक्टर
मुख्य एक्टर को नहीं जानते हैं तो क्या कहेंगे, क्या ठहरे? हाँ पीछे पुलिस था तो उसके ऊपर भी कुछ था, लेकिन अभी बहुत बोलने के बाद बाबा ने वो बातें बोली है, तो 6 बज गया ओम शांति छूट गया था, लेकिन अभी बुद्धि में नहीं है। हाँ तो क्योंकि बाबा तीनों है। अब इसमें एक बोला बाबा ने, तो देवी देवताओं को जो हम लोगों के लिए बाबा जो मेहनत करते हैं
तो कर
और सबके लिए इतना क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबा मेहनत क्योंकि तीनों है वो, और सब धर्म में चर्ची कला नहीं होती है, क्यों ऐसे बीच में बोला बाबा ने? और सब धर्म आते हैं
ऊपर से आते हैं,
आते हैं
पत्ते झड़
जाते हैं, लेकिन तूफान यहाँ आते हैं और उस
नहीं आते, बात ही नहीं,
बात ही नहीं, क्योंकि सब उतर ही रहे होते हैं। उसमें कौन से धर्म? तो मोक्ष के लिए बाबा ने क्या बोला?
वो भी पार्ट धर्म, वो कहते हैं उनको सुख नहीं चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए, मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता।
मोक्ष के लिए
मैं पार्ट धर्म हूँ तो
मैं मोक्ष को जो मोक्ष बोला, उसमें बाबा ने बोला मोक्ष कोई वर्षा नहीं। तो बाबा को खुद ही आना पड़ता है, तो फिर सबको ऊपर छोड़ने के लिए मेहनत, तो एक तो पुराने संस्कार को पलटने में मेहनत है, तो क्रिमिनल आई के लिए बोला बाबा ने, बच्चों को बनाने। और किसको पूछाता है बीच में
है।
और बाबू ने एक बात रंग भेद के बारे में छेड़ा है। बाबा को वो बात याद आ गई बीच है किसी को बीच भाई साहब नहीं बोलेंगे। देखो इस्लाम कितने कितने काले हैं। क्रिश्चियन को जैनियन को और जो धर्म देखने से कहते हैं महादेव का तीन नेत्र बोलते हैं तो इसमें बाबा ने छेड़ा है बातें है किसी की।
और
उसमें
भारत में बहुत धन है पर गुप्त है कहाँ है वो नहीं बताया। भारत में बहुत धन है गुप्त है कहाँ है वो
नहीं। तो कहते हैं जहाँ धन देखते हैं तो चढ़ाई कर देते हैं और वो फिर धनवान बन जाते हैं। और क्रिश्चियन भी धनवान और इस्लामी भी धनवान है ऐसे बाबू ने अफ्रीका में। और किसी के पास कुछ
और
है धर्म का हो गया
धर्म का
हाँ कंट्रोवर्शियल पॉइंट ज्ञान सुनाने में कितना टाइम चाहिए।
तो बाबा ने एक डेढ़ घंटा चाहिए बोला था लेकिन डेढ़ घंटा एक डेढ़ घंटा पाँच मिनट सात मिनट देते हैं उसमें क्या होगा बोला। तो अगर पाँच मिनट सात मिनट में अगर ज्ञान सुनानी पड़ी तो हम किस बात की तरफ से है ना किस बात को फोकस कर सकते इतने टाइम अगर मिल जाता है तो अच्छा
परमात्मा
अच्छा। तो बाबा भाई साहब ने रिपीट कराया था कि जो अनुभवी मुहूर्त होगा वो अनुभव करा सकता है वो तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट होगी तो लास्ट में होगा। अच्छा ओम शांति।